अध्याय 15 अध्याय का शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। श्लोक संख्या 21। श्री रूपिणी क्वनयति चरणारविन्दा लीलाम्बुजेन हरिसद्मनिमुक्तदोषः संलक्षते स्फटिक कुड्य उपेत हेन्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहणे सम्मार्जति वयदनुग्रहणे नियत्ना। श्रीरूपिणी क्वनयति चरणारविन्दा लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषः संलक्षते स्फटिक कुड्य उपेत हेन्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहणे नियत्ना। श्रीरूपिणी क्वनयति चरणारविन्दा लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्तदोषः संलक्षते स्फटिक कुड्य उपेत हेन्नि सम्मार्जति वयदनुग्रहणे नियत्ना। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर हैं कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं हैं। ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पांवों के नुपुर झुंकार करते हैं। कभी कभी उन संगम रमन की दीवारों को जो थोड़ी थोड़ी दूर पर सुनहले किनारों से अलंकृत है इसलिए गुहा से देखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है कि भगवान गोविंद के धाम में सदैव करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम्। ये करोड़ों अरब लक्ष्मियां जो वैकुंठ लोकों में निवास करती हैं पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक प्रेमिकाएं नहीं है अपितु भगवत भक्तों की पत्नियां हैं और वे भगवान की सेवा भी करती हैं। यहाँ ये कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में संगम रमण के घर होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैकुंठ लोकों की फर्श स्पर्श मणि की बनी हुई है इसलिए वैकुंठ में पत्थर और गुहा की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उस पर रंच मंत्र भी धूल नहीं है। फिर भी भगवान को पुष्ट करने हेतु श्रीया सदैव संगम रमण की दीवारों को झाड़ती रहती है। क्यों? इसलिए कि वे ऐसा करके भगवान की कृपा पाने के लिए उत्सुक रहती है। यहाँ ये भी कहा गया है कि वैकुंठ लोकों में लक्ष्मियां दोष रहित होती हैं। सामान्यतया लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती। उनका नाम चंचला है जिसका अर्थ है जो स्थिर ना हो। अतः हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ही धनवान है वो अति निर्धन बन सकता है। और एक और उदाहरण रावण का है। रावण लक्ष्मी अर्थात सीता जी को अपने साम्राज्य में ले गया किंतु लक्ष्मी की कृपा द्वारा सुखी होने के बजाय उसका परिवार तथा सारा साम्राज्य नष्ट हो गया। इस तरह रावण के घर में लक्ष्मी चंचला अर्थात अस्थिर है। रावण के श्रेणी के लोग केवल लक्ष्मी को उनके पति नारायण के बिना चाहते हैं अतः लक्ष्मी जी के कारण भी चंचल को होते हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति लक्ष्मी जी में दोष ढूंढते हैं किंतु वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में जुटी रहती हैं। भाग्य की देवी होते हुए भी लक्ष्मी जी भगवान की कृपा के बिना सुखी नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी को भी सुखी होने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी भौतिक जगत में सर्वोच्च रानी ब्रह्मा जी भी सुख के निमित्त लक्ष्मी की कृपा के लिए उनका मुंह चोरते रहते हैं।
कुछ भूल जाए उसका बर्थडे, हाँ तो संबंध टूट जाते हैं।
लेकिन यहाँ श्रीमती राधा रानी कहती है कि हे कृष्णा, आप मेरा आलिंगन करें या लाल पाल प्रहार करके मुझे दूर भगा ले, लेकिन आपके प्रति जो सेवा और प्रेम की भावना है मेरे हृदय से लंच मात्र भी कम नहीं होगी। यही वास्तव में वैकुंठ भाव है। हाँ, तो इसलिए भक्ति करते समय कई सारे विपदाएं आ सकती हैं। कई प्रकार के संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, भक्तों का व्यवहार आचरण में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वास्तव में हमें उस समय श्रीमती राधा रानी के जो विचार है वो हमें स्मरण करने चाहिए कि एन के एन प्रकार किसी न किसी प्रकार से चाहे जो भी हो जाए, हाँ, लेकिन मुझे कृष्ण की जो सेवा है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम करने की भावना है, उसको कदर भी छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार इस काल में भी हम देखते हैं कि किसी न किसी कारणवश भक्तों में मतभेद होते हैं और व्यक्ति सोचता है चलो क्या जाना है इस काल में, बहुत हो गया है इतने साल सेवा की, अभी क्या ही रिजल्ट मिलने वाला था, छोड़ के चला जाता है। लेकिन वास्तव में उसको ये जो नाव है जो प्रभुपाद ने इस भव सागर में प्रकट की है उसको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी कमी आती ना, क्योंकि बाहर तो सागर है। वर्तमान आचार्य जन कहते हैं कि इस्कॉन ऐसी नाव है, तो मैं भी छोटे छोटे छेद भी हूं उस नाव में, वो समय के साथ भरे जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए ये छेद है मुझे बाहर जाना चाहिए, बाहर जाके क्या होगा उस सागर में डूब जाएगा, परमानेंटली उसका विनाश हो सकता है। इसलिए किसी ना किसी प्रकार से हमें इस नाव का सहारा लेना चाहिए या इस नाव में बने रहना चाहिए जो प्रभुपाद ने बनाई है, और इस नाव की कैप्टन कौन है, श्री प्रभुपाद है। इसलिए चैतन्य मंगल में चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से कहते हैं मोर सेनापति भक्त जाइबे तिथान, मेरा सेनापति भक्त सबको आगे बढ़ाएगा, और उस सेनापति के हाथ में क्या होगा, संकीर्तन खड़ग लैया हाते। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मंगल में कहते हैं उस सेनापति के हाथ में तलवार होगी, और वो तलवार किस चीज की है, संकीर्तन, संकीर्तन नाम संकीर्तन जो कलयुग का प्रमुख साधन है। तो इसलिए जो ये वैकुंठ की भावना है जिसमें रंच मात्र भी काम को कोई स्थान नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा आपको भक्ति में आप कितना आगे बढ़ रहे हो ये किसी के पास जाकर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने आप को चेक कर सकते हो। किसी को हमने पूछा प्रभुपाद कैसे, प्रभुपाद कहते हैं तुम झांको अपने हृदय में और देखो ये जो काम वासना है और लोभ है वो कितनी मात्रा में तुम्हारे हृदय से कम हो गया है। तो काम का मतलब केवल काम उपभोगी नहीं, काम का मतलब है कंट्रोल करने की भावना, फिर प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भावना, आदर सम्मान प्राप्त करने की भावना, फेमस होने की भावना। ये काम शब्द अपने आप में ये काम शब्द बीज है, लेकिन इसका पौधा, इसकी टहनिया, इसके पत्ते, फूल और ये पुष्प बहुत बड़ा है। इसलिए इस शब्द को बहुत चीजों को बताने के लिए शास्त्रों में अलग अलग एंगल से अलग अलग रूपों में उसको इस्तेमाल किया है। इसलिए कल के श्लोक में वो कह रहे थे क्यों उनमें काम नहीं है वैकुंठ वासियों में, तो वहां कहते हैं कृष्ण आत्मना, वो कहते हैं क्योंकि उनकी आत्मा कौन थी, कौन है उनकी आत्मा, कृष्ण है, या कृष्ण आत्मा जिन्होंने कृष्ण को ही अपना आत्मा बना लिया है, कृष्ण को ही। इसलिए कृष्ण को प्राण, चैतन्य महाप्रभु एक महान भक्त हुए थे बंगाल में, उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, कुलीन ग्राम एक छोटा सा विलेज था चैतन्य महाप्रभु के समय में, और वहां के भक्तों से महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे। वहां के जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो वहां के भक्तगण प्रति वर्ष जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी आया करते थे और चैतन्य महाप्रभु को मिलने, चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कुलीन ग्रामीण कहे सम्मान करिया, कहते कि आप ये जो कुलीन ग्राम के निवासी हो, आप जगन्नाथ की बहुत बड़ी सेवा करते हो। प्रत्येक कि हर साल जगन्नाथ के लिए रेशम की जो रस्सी है, आप देखेंगे रथ यात्रा के समय रथ के ऊपर भगवान चढ़ते हैं तो उनको रस्सी से बांधा जाता है और रस्सी से चारों ओर से बांधते हैं और भगवान को खींचा जाता है ऊपर। तो रेशम का जो डोरी है इतना मोटा, ये सब कुलीन ग्राम के भक्त लाते थे। और भगवान जगन्नाथ को जब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में रखा जाता है रथ के ऊपर ले जाते समय, तो उनके नीचे कुशन तो भी वो लाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत उनसे प्रसन्न थे। महाप्रभु ने कहा कुलीन ग्राम में एक भक्त है, उसने मेरे हृदय को चुरा लिया है। हाँ, क्या है, कौन है वो भक्त? वो कहते हैं गुणराजान कैलास कृष्ण विजय जिनका नाम है गुणराज खान। वैसे उनका नाम मैं भूल गया था, कुछ और था, लेकिन उनको एक उपाधि दी गई थी। उस समय मुस्लिम शासन था तो कहते उन्होंने अद्भुत ग्रंथ की रचना की है। अभी भी वो ग्रंथ इंग्लिश में अनुवाद हुआ है, बंगाली बयान में वो ग्रंथ है जिसका नाम है श्री कृष्ण विजय। वो श्री कृष्ण विजय ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि उसमें कृष्ण की सारी लीलाएं भरी पड़ी है, जैसे कृष्ण बुक है ना, एग्जैक्टली कृष्ण बुक के समान है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था तो ऐसे लगा ये कृष्ण लीला से ओतप्रोत हो गया है, इतनी सारी कृष्ण लीला। तो महाप्रभु कहते हैं कि उसने वो श्री कृष्ण विजय की रचना की है और उसमें एक वाक्य ऐसा लिख दिया है जिस वाक्य के द्वारा क्या हो गया है, उसके वंश के हाथ में बिक गया, मतलब उस डिवोटी का मैं हो गया। क्या वाक्य लिखा था? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तहाएक वाक्य तार आचे प्रेम माए नंदनंदन कृष्ण मोर प्राणना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उस भक्त ने अपने उस ग्रंथ में लिखा है कि नंदनंदन कृष्ण वृंदावन के जो कृष्ण है वो मेरे प्राणनाथ है। और वास्तव में सारे ग्रंथों का अध्ययन करना, नाना प्रकार की सेवाएं करना, सब प्रकार की साधना तपस्या आदि का फल क्या है, क्या अनुभूति करना व्यक्ति को, एक ही अनुभूति करना, हाथ जोड़कर कहना कि हे कृष्णा आप मेरे एकमात्र प्रभु और मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं। बस ये जिसने हृदय में अनुभव किया और ये कहते हुए आंसू ऐसे भर आए आंखों में, तो समझना कि उसने भगवत साक्षात्कार कर लिया है। केवल होठों से ये नहीं, ये बोलना बहुत बड़ी अनुभूति है, कृष्णा आप मेरे एकमात्र प्रभु हो और मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। ये वास्तव में सारे ग्रंथों का अध्ययन करना, सब प्रकार की तपस्या सेवा आदि का परम फल है। और ये वास्तव में ऐसी सरल उपलब्धि नहीं है, उसके लिए भक्तों को क्या होना होगा, बहुत ही अधिक भगवत भक्ति के अभ्यास में उत्साहित और गंभीर होना होगा, तभी वो समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो कुलीन ग्राम के भक्त क्या तुम्हारा की कथा तुम्हार रामेण सुकर कुकुर सही मोर प्रिय अन्य जन रघुपुर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उस खुले ग्राम के भक्त इतने प्रिय, क्या उधर रहने वाला कुत्ता भी मुझे क्या है, बहुत प्रिय है। हाँ, क्योंकि उन सबके अंदर क्या भावना है, कृष्ण मेरे प्राणनाथ है। इसलिए यहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि वैकुंठ की भावना क्या है, कृष्णात्मना, उन्होंने कृष्ण को ही अपना आत्मा बना लिया है। आत्मा का मतलब है जिससे सर्वाधिक प्रेम हम करते हैं वो हमारा आत्मा है। जो हमारे सामने नहीं है तो हृदय ऐसे कुछ होने लगता है, हृदय में जैसे मोबाइल गुम हो जाता है तो पूरा परेशानी का अनुभव होता है कुछ घंटों तक हमें। तो मतलब मोबाइल हमारा आत्मा है, या किसी व्यक्ति से बहुत लगाव हमने बना लिया, इतना प्रेम हो गया कि वो सामने से चला जाए गायब रहे तो हृदय में कुछ होने लगता है, इसका मतलब वो व्यक्ति हमारा क्या है, आत्मा है। इसलिए यहां वैकुंठ वासियों के अंदर काम की भावना नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी आत्मा कृष्ण है। इसलिए आत्मा से व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम करता है। हम हमेशा वो स्टोरी सुनते हैं किसकी, अकबर और बीरबल की। अकबर ने कहा बीरबल बताओ कौन सबसे अधिक प्रिय है इस संसार में, व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम किससे करता है, तो बीरबल तो भक्त थे और बीरबल कहते हैं बड़े फिलोसोफर थे। बीरबल ने कहा कि व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम स्वयं से करता है। अकबर ने कहा संभव नहीं है, कैसे व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम अपने आप से करता है, कहते कल मैं समझाऊंगा आपको। तो कल दूसरे दिन जब ऑफिस में आते हैं बीरबल, एक बड़ा सा ड्रम लेके, डस्टबिन रखा है ना हमने इसके ऊपर लिखा है कूड़ादान, वैसे ड्रम लेके पहुंचते हैं राज दरबार में, और साथ में बंदर और उसका छोटा बच्चा, बंदरिया और उसका पिल्ला, तो ऐसे लेके आते हैं और एक पाइप भी लाते हैं। इनको लगा कि क्या है सब, बीरबल पागल तो नहीं हो गया, ऑफिस में ऐसे थोड़ी लाया जाता है। और ड्रम वगैरह रखा और कहा महाराज आज आपको मैं समझाता हूं कि व्यक्ति किससे सबसे अधिक प्रेम करता है। बंदरिया और उसके बच्चे को उन्होंने उस ड्रम में डाल दिया और नल का पता नहीं उस समय नल थे या नहीं चालू कर दिया, पानी भराना शुरू डालना शुरू कर दिया उसमें। जैसे ही जल उसमें भर रहा था और जल का स्तर ऊपर आ रहा था तो बंदरिया ने देखा अरे मेरा बच्चा तो डूब रहा है, क्योंकि माँ के हृदय में थोड़ा सा प्रेम की भावना होती है, तो बच्चे को अच्छा डूब रहा है, इधर रख दिया छाती में लगा दिया, फिर देखा पानी तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, छाती से फिर कहा रख दिया कंधे में रख दिया, पानी बढ़ रहा है ऊपर डाल दिया, पानी पूरा उस बंदरिया के मुंह तक आ गया, डूबने वाले थे। उस समय उसने बच्चे को पकड़ लिया, उसको नीचे रखा, उसके ऊपर खड़े होकर जब मार के बाहर आ गए, और जो अकबर सारे दरबार के मंत्री सब लोग ऐसी बड़ी बड़ी आंखें उन्होंने की और उन्होंने कहा समझ गए कि वास्तव में वैसे ही बीरबल ने कहा व्यक्ति स्वयं से सर्वाधिक प्रीति रखता है। इसलिए हमें सबसे अधिक प्रिय कौन है, हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अभी हमें सबसे अधिक प्रिय अपना शरीर है, आत्मा का भी इतनी हमें कोई आत्मा की भी कोई हमें क्या कहेंगे उसको परवाह नहीं है। हाँ, क्योंकि शरीर को ही आत्मा मान लिया, इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे एक शब्द पर, क्या, देहात्म बुद्धि। हाँ, देहात्म बुद्धि कि देह को ही आत्मा मान लेना, ऐसी बुद्धि जिनमें है वो देहात्म बुद्धि से ग्रस्त व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से ये देहात्म भाव जब तक रहेगा तब तक वैकुंठ आदि बस सपने हैं। हाँ, वैकुंठ आदि इतनी सस्ती चीज थोड़ी है, भगवान ने इतना जोर शोर से भगवद गीता में बोल दिया है कि करोड़ों करोड़ों में से कोई एक मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने लिखा, मैंने इतना जो लिखा है वो मैं सफल मानूंगा यदि कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए। हाँ, तो आप सोचो, हाँ वैकुंठ कोई जोक नहीं है, हाँ ये मजाक नहीं है, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कृष्ण को क्या बनाना पड़ेगा, अपनी आत्मा। इसलिए वो कहते हैं कृष्णात्मनाम रज आद धरु सजाते हैं कि कृष्ण को ही उन्होंने अपनी आत्मा बनाई थी। और आत्मा बनाने का मतलब क्या है, तो वो कहते हैं कि सम्मार्जते यतनो ग्रहणे अन्य यत्न, यत्न पूर्वक वो जो लक्ष्मियां हैं वहां निवास करने वाली वैकुंठ निवासी स्त्रियां हैं, वो क्या करती है वहां झाड़ू लगाती है। अभी जहां धूल आदि का नामो निशान नहीं है, हम अभी सफाई के बाद हम कहेंगे मैं झाड़ू लगाता हूं, कहेंगे ये ड्रामा करना है, पहले गंदगी तब नहीं लगाया झाड़ू, या फिर सबको प्रसाद बांट दिया, अभी कोई लेने वाला नहीं है तो बाद के हाथ में लेके चलो थोड़ा प्रसाद सर्विस करता हूं। हाँ, लेकिन वैसा भाव इनमें नहीं है, इनमें वास्तव में सेवा करने की भावना है, क्योंकि एक भक्त को सेवा से अलग नहीं किया जा सकता। भक्त मतलब क्या, उसके साथ ये वर्ड जुड़ा होता है, क्या, सेवा। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति शब्द का अनुवाद क्या किया, डिवोशनल सर्विस। दुनिया भर के लोगों की किताबें यदि पढ़ो अध्यात्म के ऊपर जिन्होंने लिखा है, और जब भक्ति शब्द आता है तो वो अटक जाते हैं, डिवोशन। लेकिन प्रभुपाद ऐसे प्रथम आचार्य हैं, उन्होंने बड़ा सटीक अनुवाद किया है भक्ति शब्द का, और वो है भक्तिमयी या प्रेममयी सेवा। इसलिए प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि भक्ति ये प्रैक्टिकल चीज है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, कृष्ण की सेवा में लगता है। तो जिसको आपने अपना आत्मा मान लिया है, आप उसी की क्या करोगे, सेवा करोगे, उसी के लिए दिन रात मरोगे। हाँ, व्यक्ति ने अपने परिवार को ही अपनी आत्मा मान लिया है, तो कितना परिवार के लिए कष्ट उठाता है, नहीं? अब सोचो, ठंड हो, गर्मी हो, शारीरिक खुद के शरीर में कितने भी कष्ट हो, लेकिन परिवार के पालन पोषण के लिए व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता, वो सब प्रकार के कष्ट उठाता है उनका पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी आत्मा उनको मान लिया है, वही उसके लिए देवता है, वही उसके लिए क्या है, भगवान है। तो उसी प्रकार से यदि हमें कृष्ण को अपनी आत्मा स्वीकारना है, तो हमें क्या करना होगा, कृष्ण की जो सेवा है उसको स्वीकार करना होगा। इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, या कई बार भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि एक व्यक्ति सेवा किए बिना नहीं रह सकता, हाँ वो किसी न किसी की सेवा करता है, तो इसलिए सेवा करनी है, तो किसकी सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा जेगेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। अभी हमारा स्वरूप क्या है, कभी कभी कृष्णदास, कभी कभी मायादास। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कृष्ण की सेवा नौ प्रकार से की जाती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन नौ प्रकार से भगवत सेवा में कोई व्यक्ति अपने आप को नियुक्त कर सकता है। और यदि व्यक्ति नौ प्रकार की सेवा में नियुक्त हो जाता है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं निश्चित रूप से कृष्ण उसकी आत्मा बन जाएंगे, या कृष्ण के प्रति उसके हृदय में प्रेम की भावना जागृत होगी। इसलिए कोई व्यक्ति सोचता है कि समाधि प्राप्त करना है जीवन में, तो समाधि क्या है, समाधि यही है कि ये जानना कि मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूं, ये वास्तव में समाधि है। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में समाधि का मतलब है ये अनुभव करना कि आप कृष्ण के शाश्वत सेवक हो। इसलिए हमारा जो दीक्षा का नाम है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रभुपाद की प्रभुपाद ने जब दीक्षा दी शुरुआत में तो एक भक्त गया, उसका नाम उसको अच्छा नहीं लगा। हाँ, उसने कहा प्रभुपाद ये नाम मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मेरा नाम बदल दो। हाँ, प्रभुपाद ने कहा देखो ये जो नाम में दो चीजें होती है, सोचो कृष्ण दास है। हाँ, तो ये जो कृष्ण दास है, कृष्ण दास वो आगे वाला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है पीछे जो टाइटल जोड़ दिया है ना मैंने दास, वो इंपॉर्टेंट है। तो दीक्षा के बाद ये दास शब्द को ही अनुभव करना वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के एक संगीत है जिन्होंने ग्रंथ लिखा जिसमें वो कहते हैं केंद्र बोले वहे कृष्ण आमे तुया दास, कि हे कृष्ण कब मेरे अंदर भावना आएगी कि मैं रोते रोते केंद्र बोले रोते रोते बोलूंगा कि कृष्ण मैं आपका सेवक हूं। तो लेकिन ये भावना कभी भी उत्पन्न नहीं होगी जब तक व्यक्ति भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना दया अपरत चेतसा, जब तक व्यक्ति संसार के भोग ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त रहेगा तब तक उसके हृदय में जो नित्य सेवत्व का भाव है कभी भी प्रबल नहीं होगा और कभी भी वो भगवत समाधि में निमग्न नहीं होगा। तो वास्तव में समाधि का मतलब है भक्त किसी न किसी प्रकार की जो कृष्ण से संबंध रखने वाली चीज है उसमें निमग्न रहता है। जैसे प्रभुपाद का एक बार टेलीविजन में इंटरव्यू था तो एक स्टूडियो में प्रभुपाद को ले गए तो वहां वो सारे कर्मचारी थे, कुछ तैयारियां कर रहे थे और प्रभुपाद बैठे थे और लगभग काफी समय हो गया तो देखा रिकॉर्डिंग शुरू होने वाला है और लेकिन कुछ आवाज आ रही है। अब आवाज कैसे आ रही थी, जैसे मधुमक्खी ऐसा आवाज आता है ना, तो वो आ रहे थे। तो ये सब लोग परेशान थे आवाज कहां से आ गई, ये रिकॉर्डिंग शुरू करनी है अभी, स्वामी जी आके बैठे हैं। वो तारे ढूंढ रहे थे, तारे निकाल रहे थे, जोड़ रहे थे, इधर उधर सारा कुछ कर रहे थे स्टूडियो में, लेकिन फाइनली एक लेडी जो रिपोर्ट बैठी थी उसने देखा, क्या देखा कि ये आवाज तो कहां से आ रही है, स्वामी जी से आ रही है। क्योंकि प्रभुपाद ऐसी स्थिति में होकर भी काफी देर इंतजार कर रहे थे, उनकी काफी आयु हो गई थी लेकिन कृष्ण की सेवा में निमग्न थे, वहां बैठे बैठे क्या कर रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो प्रभुपाद कुछ भी नहीं, अपना हाथ डाला था अपने जपमाला में और बिल्कुल मंद स्वर में हरे कृष्णा ये आवाज कैसे निकल रही थी, जैसे पिछले दो तीन श्लोकों में वो मधुमक्खी का उदाहरण आया था ना, मधुमक्खी जब अपना आई और अपना आवाज क्या कहते हैं उसको स्वर निकालने लगी उसका आवाज, तो बाकी सारे प्राणी शांत हो जाते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं। तो प्रभुपाद भी क्या कर रहे थे उस स्थिति में भी कृष्ण की जो सेवा है नाम संकीर्तन में मग्न थे और सारे लोग बिल्कुल चकित हो गए कि ये स्वामी जी से आवाज निकल रही है और हम कब से ढूंढ रहे हैं ये आवाज कहां से आ रही है। तो प्रभुपाद का जीवन यदि देखें वास्तव में सेवा होता है। हाँ, तो व्यक्ति ये जो आयु है या विपदा है वो कभी रुकावट नहीं बन सकती कृष्ण की सेवा में, किसी भी किसी हर स्थिति में व्यक्ति कृष्ण की सेवा में निमग्न रह सकता है। जैसे प्रभुपाद अंतिम समय में भी उनके बेड में लेटे हुए थे, शरीर बिल्कुल हिल तो नहीं रहा था लेकिन हल्के से वो बोलते हुए भागवतम का क्या कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। उनके भक्त उनको संस्कृत में बोलते थे, पढ़ाते थे जयादेव स्वामी आदि, और प्रभुपाद फिर भी अनुवाद कर रहे थे। तो इस प्रकार से वास्तव में एक भक्त के लिए समाधि क्या है कि वो कृष्ण से संबंधित किसी ना किसी सेवा में क्या हो जाए, निमग्नता प्राप्त करे। और उससे क्या होगा, वो आध्यात्मिक गुरु और वैष्णव के द्वारा यह पावन होगा, हम मतलब उसको शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा जिसके द्वारा वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है जो मतलब उसने सोचा भी नहीं हो। हाँ, जैसे आप जानते हैं मध्वाचार्य के बारे में, मध्वाचार्य एक महान हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। तो मध्वाचार्य जब भी चलते थे तो बहुत सारी किताबों को लेके चलते थे, तो किताबें जब लेके चलते थे तो बैल गाड़ी में रखते थे किताबों को और एक बैल उसको ढोता था। तो मध्वाचार्य के जो शिष्य थे बहुत बड़े बड़े विद्वान, आप सोच नहीं सकते, उनके जो शिष्यगण है, जो परंपरा हम पढ़ते हैं ना, जय तीर्थ, अक्षोभ्य तीर्थ, ये सारा गीता के उसमें और सारे मध्वाचार्य के शिष्यगण है, ऐसे धुरंधर भक्तगण है। तो ये सब कहते थे कि गुरुदेव आपने जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उसके ऊपर हम तात्पर्य लिखना चाहते हैं। मध्वाचार्य ने कहा और इसके ऊपर टीका या तात्पर्य लिखने का काम ये बैल भी कर सकता है, आप लोगों को क्या लिखना है, उसके लिए इतना बुद्धि थोड़ी भी आवश्यक। बल्कि मध्वाचार्य ने क्यों बोले मध्वाचार्य, क्योंकि वही व्यक्ति कर सकता है जो गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए क्या है, सिंसियर है। तो मध्वाचार्य ने देखा ये जो बैल है वो इतनी मेरी सेवा में निमग्न है बिना किसी कंप्लेंट शिकायत। सेवक का मतलब है कोई शिकायत नहीं, इसलिए हमें सेवक नहीं गुलाम बनने का प्रयास करना चाहिए। गुलाम मीन्स उसने कभी नो करना नहीं सीखा, इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है ब्रह्मचारी मीन्स क्या, कि जिसको नो शब्द कभी पता ही नहीं है उसके लाइफ में। ब्रह्मचारी मीन्स वो जिसको एक ही शब्द पता है और वो क्या है, यस। हाँ जी, लेकिन काम करेगा ना जी का। तो वैसे ही वो कहते हैं वही व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है जिसने केवल क्या सीखा है, हाँ करना सीखा है गुरु और वैष्णव के लिए। तो मध्वाचार्य ने देखा कि बिना किसी शिकायत के जो बैल है दिन रात सेवा कर रहा। देखो बैल कभी कंप्लेंट करता है, अरे निकाल दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो, भूख लगी है, वो प्यास लगी है। मध्वाचार्य ने देखा इतना सिंसियर, तो उन्होंने कहा ये बैल भी एक सेवा कर लेगा, आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो बैल कालांतर में शरीर छोड़ता है और आगे चलकर आगे जब उस बैल का जन्म होता है तो धुंधुपन नामक एक सैनिक बनता है। और वो जब युद्ध के लिए जा रहा था एक बार घोड़े के ऊपर बैठकर, तो घोड़े के ऊपर जा रहा था तो उसको प्यास लगी, तो कई एक दो ग्रंथ में मैंने पढ़ा था प्यास लगी तो वो घोड़ा चल रहा था तो वैसे ही मुंह नीचे करके सीधा पानी पी रहा था या फिर एक जलाशय के पास गया और ऐसे हाथ में लेके पानी नहीं पी रहा था, सीधा मुंह को क्या किया उसमें
लगाया,
ऐसे पानी पी रहा था डायरेक्ट मुंह से उस पात्र में डाल के जलाशय में। तो ये किसी ने देखा जानवर की तरह पानी पीता है, मनुष्य की तरह कहा, मनुष्य ऐसा नहीं कि पानी पीता है गिलास पीता है, ये तो सीधा मुंह डाला और पीना शुरू कर दिया। तो इसको स्मरण आया, उसको कहते जाति स्मरण। आपने पीछे कई श्लोक गए हैं उसमें एक शब्द आया था जाति स्मरण। जाति स्मरण में जिसको जैसे महाराज भरत वो जो हिरण बने तो उनको अपना पूर्व जन्म याद था, उसको कहते जाति स्मरण। कि व्यक्ति इस जीवन में है लेकिन पूर्व जन्म भी जिसे याद है उसको जाति स्मरण कहते हैं। तो ऐसे ये जो घोड़ा ये जो धुंधुपंत थे उनको तुरंत याद आ गया, मैं तो कौन था, वो मध्वाचार्य का बैल था। और उन्होंने तो ये सेवा मेरे लिए बोला था, तो ये तुरंत क्या करते हैं, मध्वाचार्य के एक शिष्य है अक्षोभ्य तीर्थ, उनसे जाके उनकी शरण ग्रहण करते हैं और उनसे जाकर दीक्षा ग्रहण करते हैं
और आप देखेंगे प्रभुपाद ने अपने भागवतम के कई तात्पर्य में उनकी टीका को इस्तेमाल किया है जिनका नाम जय तीर्थ पड़ा। तो ऐसे हम वो जो जय तीर्थ बन जाते हैं जो क्या करते हैं मध्वाचार्य के कई ग्रंथों पर अपनी टीकाएं प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति यदि कृष्ण की सेवा में नियुक्त है हाँ तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक गुरु और वैष्णवगण उसको एम्पावर्ड और शक्ति या सामर्थ्य प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो बहुत बड़े बड़े कार्य या अनमोल सेवाएं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्त को किसी ना किसी सेवा में हमें क्या होने का प्रयास करना चाहिए, निमग्न होने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावना में किसी एक चीज में हम निमग्नता यदि प्राप्त कर ली है तो फिर माया हमें क्या नहीं कर सकती, प्रभावित नहीं कर सकती। हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन में मग्न थे। तो उसी प्रकार से माया देवी ने जब अप्रोच किया तो कभी प्रभावित नहीं है क्योंकि कृष्ण की सेवा में निमग्नता उन्होंने प्राप्त की और उसके प्रति सेवा के प्रति उनको एक आसक्ति जागृत हो गई थी। जब प्रभुपाद जब भारत आए थे और भारत में ज्यादातर समय बिताते थे तमाम कृष्ण महाराज उनके एक शिष्य हैं। तो प्रभुपाद ने एक मीटिंग किया और उस समय सोचा कि अलग अलग वर्ल्ड के विभाग देश अलग अलग जीबीसी को बांटूंगा ताकि वो सेवाएं देते रहे। तो तमाम कृष्ण महाराज को लगा मैं तो भारत लूंगा, इंडिया अच्छा है क्योंकि यह प्रभुपाद को ना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, खाने देते प्रभुपाद, विदेशों में बहुत मिलते रहते रहते थे प्रभुपाद को, तो यहाँ में इजीली मिल सकता हूँ, हमेशा प्रभुपाद का संग मिलेगा। तो प्रभुपाद ने इनको दे दिया इंडिया, भारत दिया, फिर भारत में सेवाएं संभालने लगे। देखा परेशान हो गए भारतीय से जल्दी व्यक्ति परेशान होना ऐसे झो में भी हुआ था। प्रभुपाद के पास प्रभुपाद के शिष्य थे पंच द्रविड़ स्वामी, तो जो का उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया मुंबई का और वो सेवा करने लगे और देखा कि बहुत सारी परेशानी आ रही और अधिकतर इंडियन डिवोटीज थे। प्रभुपाद के पास नहीं कहते, प्रभुपाद ने इंडियंस के साथ सेवा नहीं करनी है मुझे, बस प्रभुपाद ने कहा मैं भी तो इंडियन हूं। हाँ प्रभुपाद कहते प्रभुपाद आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या है। तो प्रभुपाद ने कहा कि किसी भी स्थिति में आपको सेवा को त्यागना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये जो तमाम कृष्ण गोस्वामी थे वो भी कुछ ही दिनों में परेशान हो गए, उन्होंने कहा इंडिया में बहुत भ्रष्टाचार है, जहां जाओ कुछ ऑफिशियल काम करने होते हैं और बहुत परेशान हो गए भक्तों के साथ भी और बाहर की जनता के साथ और वास्तव में उनका सरेंडर आप नहीं सोच सकते। तमाम कृष्ण महाराज एक बार एक व्यक्ति को लाइफ रोपा देकर गो एंड मेक लाइफ मेंबर्स, लाइफ मेंबर बनाने जून मुंबई में वो किसी के बड़े व्यक्ति के घर गए ऑफिस गए, उसने कहा मैं तभी लाइफ मेंबर बनूंगा जब एक कोका कोला का बोतल देखा ना तुमने ये अपने सर में डाल दो जैसे गंगा का पानी डालते हो ना पूरा बोतल ऐसे डाल दो तब मैं लाइफ मेंबर बनूंगा। तमाम कृष्ण महाराज ने कोका कोला का बोतल लिया उसके ऑफिस में पूरा अपने सर में क्या कर दिया उड़ेल दिया। तो प्रभुपाद की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे प्रभुपाद की एक शिष्या थी मालती माता जी, हाँ उनका छोटा अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया था कुछ ही महीने का था। प्रभुपाद ने कहा लंदन जाओ तीन तीन कपल्स, वो छोटे सा बच्चा सरस्वती उसको लेके लंदन पहुंची। हाँ तो आप सोचो ऐसे ऐसे प्रभुपाद के शिष्य हैं जिन्होंने प्रभुपाद के लिए हर प्रकार की सेवा की है अपने सुख का सुख को न देखते हुए। तो ऐसे तमाम कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास आए कंप्लेन करने और उन्होंने कहा बहुत परेशान हूं मुझे इंडिया में सेवा नहीं करनी मुझे आप बाहर भेज दो। प्रभुपाद ने कहा कि देखो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, भारत में इतने बिजी रहते हो सेवा करने के लिए, ये सब चीज को सहन करते हुए सेवा करते रहो। हाँ क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एक सेकंड भी नहीं है इसके लिए माया के लिए। प्रभुपाद ने बताया यदि माया के लिए एक सेकंड होगा ना, तो माया ऐसे एक सेकंड को कितना बना लेती है, एक पूरा साल बना लेती है। एक सेकंड माया के लिए दिया तो माया आपको एक साल तक एंगेज रखेगी। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इन सब चीजों को सहन करते हुए तुम क्या करते रहो, अपनी जो सेवा है उसको कंटिन्यू करो। इस प्रकार से ये जो वैकुंठ की जो स्त्रियां हैं, जिनके पास वो केवल 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 भगवान की प्रसन्नता के लिए और उनका अनुग्रह, ये शब्द श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण है, हमें अनुग्रह मीन्स कृपा प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब देखो वो खिलाड़ी है, उसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी शारीरिक रूप से, लेकिन उसके अंदर वो मनोबल और इच्छा थी सेवा करने की। वो गई देखा कि हनुमान आदि बड़े बड़े पत्थर पहाड़ हो रहे हैं, चलो मैं भी कुछ करती हूँ। उसने सोचा मैं कई बार हर व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति के लिए कृष्ण भावना में क्या है, स्थान है, हर प्रकार से वो सेवा कर सकता है। और सेवा, कोई सेवा बड़ी नहीं होती और कोई सेवा छोटी नहीं है। कृष्ण कभी भी नहीं देखते कि ये बड़ी सेवा है और ये छोटी सेवा है। इसलिए राम ने वो सिखाया, हनुमान को डांटा और गिलहरी को क्या प्रशंसा की। इसलिए सेवा के द्वारा ही भगवत कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस प्रकार से कुब्जा ने भी प्राप्त किया। हाँ, क्या दिया था कुब्जा ने, चंदन। उस किसके लिए ले जा रहे थे, कंस के लिए। वो भगवान को देखा, भगवान को अर्पित किया। उसने सोचा नहीं वो कंस मुझे मार डालेगा, जो मर्जी हो मेरे साथ, लेकिन ये जो कृष्ण है ना इनको चंदन अर्पित करो। तो ये भावना कुब्जा का था, जिसके द्वारा उसने भगवान का जो अनुग्रह है वो प्राप्त किया। इसलिए हमारे लिए आदर्श उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी ने इतनी भगवान की सेवा की कि भगवान राम ने कहा कि हनुमान आपकी सेवा को देखकर इसके बदले में कुछ देने के लिए मेरे पास नहीं है। पहले राम ने सोचा क्या करूं, तो राम ने अपनी आंखें बंद की, हनुमान को सेवा के बदले कुछ देना चाहता हूं। तो आंखें इसलिए बंद की, आचार्य टीका लिखते वहां रामायण के श्लोक में वो कहते हैं हनुमान राम ने आंख इसलिए बंद की क्योंकि उन्होंने पूरे त्रिभुवन में ढूंढा, वस्तु ढूंढ रहे थे, अपने वैकुंठ में ढूंढ रहे थे, साके धाम में देने के लिए कुछ नहीं मिला। जैसे आप सोचते हैं वो कहां गुम हो गई चीज, तो आके बंद करते हैं कहां चीज गुम हो गई, फिर दिया जाता है। हाँ, तो ऐसे हनुमान राम ने सब जगह आके बंद करके ढूंढा त्रिभुवन में, अपने धाम आदि में कुछ भी नहीं था, और राम के आगमन से आंसू निकलने लगे। देखा इतना सेवा भाव, हनुमान के निकट गए और उनका आलिंगन किया। आलिंगन करते कहा कि हनुमान आपकी सेवा के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इस आलिंगन के अलावा प्रेम भरा आलिंगन। और हनुमान गदगद होते वो कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपकी सेवा निरंतर करना चाहता हूं, और आपका जो महिमा का गान जहां जहां होता है वहां मैं क्या करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, और आपके नामों का उच्चारण अपने जीवा से करना चाहता हूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों को एक सेवा देते हैं। जब जगन्नाथपुरी हर साल चैतन्य महाप्रभु के भक्त उन्हें मिलने आते थे और उनके लीडर हुआ करते थे शिवानंद सेन, चैतन्य महाप्रभु कहते शिवानंद सेन तुम हर साल भक्तों को जगन्नाथपुरी लाओ, केवल लाओ ही नहीं उनका टेक केयर करो, उनका केयर करो, प्रेम से उनको संभालो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। और फिर चैतन्य महाप्रभु से जब ऐसे बहुत सारे भक्त बात कर रहे थे, तो उस समय दो भक्त चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछते हैं। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं तबे रामानंद आय सत्य राज खान प्रभु चरण की छू कैलन मैदान। तो ये दो डिवोटी चैतन्य महाप्रभु को, सत्य राज खान और रामानंद, ये कुलीन ग्राम के भक्त हैं। उन्होंने कहा महाप्रभु एक निवेदन है, क्या निवेदन है, गृहस्थ विषय आवे केमो रसाधने श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। उन्होंने कहा कि हम तो गृहस्थ हैं और विषय है, सदैव मन कृष्ण में कभी भी भागता, विषयों की ओर मन भागता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सेवा करें जिसके द्वारा हमारा मन विषयों से हटकर आपके चरणों में लग सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको तीन चीजें करने के लिए बोली। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कह कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा, उन्होंने कहा कृष्ण की सेवा करो किसी ना किसी प्रकार से, और दूसरा है वैष्णव सेवा, वैष्णव की वाणी और लोगों से सेवा करो, और तीसरी चीज क्या बोली, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, निरंतर कृष्ण के नामों का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों को ये शिक्षा देते हैं, और हर साल महाप्रभु के पास सेम प्रश्न वो पूछते थे। आप मध्य लीला में पढ़ोगे चैतन्य चरितामृत के, और हर साल महाप्रभु ये तीन ही चीजें बोलते थे। वो कहते थे कृष्ण की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, और नाम संकीर्तन करो, हरि नाम के प्रति आदरण बढ़ाओ निरंतर। तो इस प्रकार से वास्तव में हमें वैकुंठ जाने का सपना यदि साकार करना है, पूरा करना है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इन तीन चीजों को अपने जीवन में धारण करना होगा। कृष्ण की सेवा गुरु और वैष्णव के आदेशानुसार जो भी हमें प्रदान करते हैं उसको आनंद के साथ करना चाहिए, और वैष्णव की सेवा, हाँ ये नहीं कि ये बड़ा सीनियर बनता है, ये तो ऐसा ही नया बनता है कहां से, नहीं, कोई भी हो भक्त, हाँ उसकी सेवा हमें करनी चाहिए किसी ना किसी प्रकार से। और तीसरी चीज है भगवान का नाम, श्री हरि नाम, ये निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी वास्तव में यहाँ जैसे लक्ष्मी अगर अनुग्रह प्राप्त करना चाहती है, हम भी कृष्ण का अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी।